है। यदि गुरु ठीक नहीं है या जीवन में गुरु नहीं है तो उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, सुखी और शांतिमय नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, ये गुरु कैसा होता है। रामचंद्र जी किसी विशेष कारण से सीता जी को वनवास दे चुके हैं, एक दो दिनों के लिए नहीं, आजीवन उनको दे चुके हैं वनवास। सीता जी को लक्ष्मण जी गंगा के उस पार बहुत दूर जंगल में दे आए। गनीमत थी,
रोते हुए विलाप करते हुए सीता जी को वाल्मीकि जी मिल गए, पिता के रूप में अपने घर में ले गए। कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिता हूं, और उनको अपने आश्रम में एक पृथक रूप में, जहां महिलाओं का निवास था, महिलाएं जहां भजन करती थी, चतुर्थ आश्रम वाली, वहां पर उनको रख दिया। दो पुत्र भी लव और कुश पहले से ही गर्भ में थे, वनवास देने के पहले से दोनों पुत्र है, बड़े सुंदर सुकांत, बड़े वीर पराक्रमी, होनहार बीरवान के हो तिची कनीपा, जो भविष्य में बहुत उन्नत विचार के होंगे, वो बचपन में ही ऐसे दिखते हैं, उसके पत्ते बड़े अच्छे, बड़े बड़े सुंदर सुकांत। रामचंद्र जी को किसी के साथ न बातचीत करता है न कुछ, अकेले मौन रहते हैं। राजभवन में चटाई बिछा दिया, सीता जी जंगल में जो जिस रूप में है, चटाई पर सोना, लकड़ी बीन करके लाना, अपने हाथों से कुछ सिद्ध पक बनाने ला, फल ले ला, किंतु उनके सांत्वना के लिए दो पुत्र और पिता के रूप में वाल्मीकि जी हैं। किंतु रामचंद्र जी के पास में सांत्वना देने के लिए कौन है? कोई नहीं है। कुछ दिन बीते, मन महसूस कर आते हैं, उनकी इच्छा हुई मैं यज्ञ करूं। गुरु जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी आए, उनके सात पुरुषों से वो गुरु बने आ रहे हैं। उनको उम्र इतनी थी, जो एक तरह से समझिए तो अजर अमर हैं, इसलिए सात पुरुषों से गुरु बनते चल रहे हैं। और उसके बाद में द्वापर तक त्रेता के प्रारंभ में उनको देखा गया, इसलिए कभी मरते नहीं। और कैसे अगाध विद्वान, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, परम भगवत भक्त, ज्ञानी, अत्यंत श्रेष्ठ, सहिष्णु, ऐसे सब प्रकार से देख राम जी उनके चरणों में गिरे, बोले जैसे गुरु जी मैं यज्ञ करना चाहता हूं। उन्होंने सीधा उत्तर दिया, यज्ञ नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? यज्ञ करना है तो सीता जी को बुलाओ, पत्नी को बुलाओ, बिना पत्नी का यज्ञ तू नहीं कर सकता, यही तो मुश्किल है, मैं सीता जी को बुला नहीं सकता, फिर यज्ञ नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, पति और पत्नी दोनों मिलकर के ही यज्ञ कर सकते हैं। कोई भी उपाय निकालिए, तो उपाय यही हो सकता है, ये तुम दूसरी शादी करो, दूसरी कोई अच्छा दे करके। तुम्हारे पिताजी को तो 360 रानियां थी, और उसमें पाठ रानियां तीन थी, तो तुम भी एक शादी कर लो। मैं शादी तो नहीं करूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए, तो फिर यज्ञ नहीं कर सकते कुछ इस तरह से। नहीं तो यज्ञ तो हमको करना ही है, तो यज्ञ करना है तो सब बातें करो, नहीं फिर भी कोई उपाय बतलाइए, तो फिर तुम शादी करोगे नहीं, सीता को बुलाओगे नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो फिर भी आप समर्थ हैं, कोई उपाय बतला सकते हैं। अच्छा तो एक बात करो, सोने की सीता बनाई जाए, और सोने की सीता तुम्हारे बाएं तरफ में बैठे, और तब तुम यज्ञ कर सकते हैं। हाँ, ये हमको मंजूर है। तब स्वर्ण सीता बनाई गई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कौन? स्वयं वशिष्ठ जी। और करवाने वाला राम, भला उस प्रतिमा में प्राण ना आ जाए? प्राण आ जाए के साथ में जी। ऐसा गुरु हो और आप सब जीवन का कर्तव्य ठीक से समझा सके। उन्होंने कहा जे वशिष्ठ जी यदि कहते जे भाई ये यज्ञ नहीं होगा, वो $1 करोड़ लेकर के उनके सामने रख देते सोने की सर्फियां। कहा जे गुरु जी आप यज्ञ कर। हाँ, उनके मुख से पानी आ जाता। कहा हाँ हाँ कराओ। कैसे? और पत्नी पत्नी की कोई जरूरत? तब तो जहन्नम में जाते। इसलिए गुरु भी ऐसा होने चाहिए, लोभी लालची नहीं हो, भगवान की अनुभूति युक्त और अपने काम में पक्का हो, भगवत भजन परायण हो, अनुभूति हो भगवान की, और संसारी किसी प्रकार का लोभ लालच न रहे, तनिक भी कोई कामना वासना अर्थ की लालसा, स्त्रियों के प्रति आकर्षण इत्यादि ये सब कुछ न रहे। एक तो उनके तरफ में कोई नजर ही नहीं जाए, जाए भी तो बेटी माँ और बहन बस। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष कलह, किसी से कुछ लेना देना नहीं। यह है गुरु का लक्षण। ऐसे लक्षण युक्त संसारी उसी के लिए बतलाया गया शब्द ब्रह्म निष्ठ और पर ब्रह्म निष्ठ। क्या है वो? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम शब्दे पर च निष्णातम ब्रह्मन उपशमस्य। इसलिए सुनिए कि इसको ग्रहण कर सकें। इस नियत से सुनिए जिसको ग्रहण कर सकें। तो गुरु का यह लक्षण होना चाहिए, उसमें मिले। शास्त्रों में समस्त सब प्रकार के शास्त्रों में जिससे हमारा जीवन कल्याण हो उसमें निपुण हो, कोई भी ऐसी संदेह की बात नहीं आए जिसमें कि वो संदेह कर जाए ये हो कि ये हो, ऐसा नहीं। समस्त परिस्थितियों में सब विषय में वे पूर्ण हो जो शिष्य को परामर्श दे सके और भगवान की अनुभूति हो। और तीसरा, संसार में अनाशक्त हो। ऐसा व्यक्ति गुरु हो सकता है। ऐसा जिसके जीवन में गुरु मिल जाए उसका जीवन धन्य है, वो सुखी और शांति रहेगा। और जिसको ऐसा गुरु नहीं है वो सुखी शांति नहीं रह सकता। विशेष करके इस चीज में पारंगत हो गुरु, किसकी उपासना और कैसे उपासना की जाए, और वो वेद उपनिषद शास्त्र भागवत रामायण पुराण इत्यादि के अनुकूल हो, जो हमारे पुरखे लोग आज तक मानते आए हैं इसके अनुकूल हो, तब तो ठीक है। ऐसे गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करें, यही कीर्तन का ये उद्देश्य था। जिसको ऐसा नहीं है उसका जीवन कर्णधार रहित नौके में बैठे हुए भवनों में चल रही है नौका, कर्णधार नहीं, उसको खेने वाला नहीं, दिशा निर्देश करने वाला नहीं, और नौका जब तक डूब जाएगी। इसलिए जीवन में परामर्श देने वाला गुरु हो। पहला गुरु तो माता पिता है, किंतु माता पिता ही जब इस विषय को नहीं जानते हैं तो वो क्या गुरु का काम करेंगे। आजकल समाज के नेता कहिए वो, और राय कौन थे इसके पहले प्रधानमंत्री? नरसिंह राव। उनसे परामर्श करने जाएंगे जी हम क्या करें? उनका खुद ही दिशा निर्देश नहीं है, इन लोगों का नहीं। महात्मा गांधी तो थे तो कुछ परामर्श दे सकते थे, ये राम राम करो और ये भी करो, आजकल का वो भी नहीं। इसलिए परमार्थिक गुरु होने चाहिए और उसको समर्पण करके उसके बातों को हम मान करके चलेंगे, तब तक जीवन में हम सुखी रह सकते हैं, अन्यथा सुखी नहीं रह सकते। विशेषकर आज के उच्छृंखलमय जीवन में, उच्छृंखल माने समझते हैं? उच्छृंखल माने क्या? स्वेच्छाचारी, कोई बतलाने वाला ही नहीं रहा, न मानने वाला है। इसलिए आजकल के
दो एक दिन सुखी रहते हैं, प्रेम तो परस्पर रहता नहीं। आप लोग बैठिए तो आप लोग कहीं मत जाइए, कोई चीज की जरूरत नहीं है, हमारी बातों को बस सुनिए, बैठ, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं। तब जीवन सुन, यदि जीवन में सब कुछ है, मान लो सब कुछ है, रुपया पैसा घर महल सब कुछ है, किंतु पति और पत्नी में दोनों में बनती ही नहीं, तो वो जीवन में सुखी रह सकते हैं कि नहीं? सब कुछ रहने पर भी नहीं सुखी रह सकते। बाप बेटे में बनती नहीं, जीवन में क्या सुखी रह सकते हैं? इसलिए जीवन में प्रेम की एक चीज है, आजकल इसी प्रेम की समस्या है और कुछ नहीं। लाखों लोग एक जगह में मिले हुए मिलते हैं, और घर में रसोई से लेकर स्विच दबा दिया रसोई घर आ गया, स्विच दबा दिया डाइनिंग रूम आ गया, स्विच दबा दो और कोई रूम आ गया, अभी हीट आ गई, अभी कोल्ड आ गया, सारी व्यवस्थाएं हैं, किंतु जीवन में छटपटाहट है, कुछ चीज का अभाव है, इसलिए जीवन में सुखी नहीं रहते। वो अभाव है प्रेम। इसमें सब कुछ मिल सकता है, किंतु प्रेम स्नेह ये नहीं जगत में है। यदि है तो आर्टिफिशियल है, ऊपर से होठ रंगते हैं, ब्रह्मचर्य का होठों पर लाली और मुस्कुराहट नहीं, बनावटी। ब्रह्मचर्य तो है ही नहीं, न लड़कियों में न लड़कों में, बचपन से ऐसी शिक्षा ही आती है, ऐसी दी जाती है, सचरित्रता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, धर्म का कोई पाठ नहीं है, पहले क्लास था, अब वो क्लास भी नहीं है धर्म का, धर्म को समझते ही नहीं। धर्म एक सांप्रदायिकता है, लड़ाई झगड़े का ये एक जड़ है, इसलिए आजकल धर्म निरपेक्ष सभी समाज होने लगे हैं, इसलिए जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसलिए यदि शुद्ध गुरु होगा, भगवान की अनुभूति युक्त तत्वों को जानने वाला, हमारे समस्त संदेहों को दूर करने वाला, तो हमको अच्छी तरह से गाइड करके हमारे जीवन को सुखी और शांति बना सकता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु की वंदना की। चलिए आप बोलो तो, एक सबसे धनी अमेरिका माती देखा, गरीब देशों में भी देखे, छोटे बड़े सभी राष्ट्रों में देखे, भारतवर्ष में देखा, भारतवर्ष में कुछ कुछ शांति है और जगहों में नहीं, इसका कारण क्या है? उनको थोड़ा सा ऊंचे जगह पर अच्छी तरह से बैठने के लिए कोई स्थान देना, वहां पर एक छोटा सा मोढ़ा है ना, तो मोढ़ा इनको दे दीजिए, विशेष करके जहां पर अधिक अमीरी है, रुपए पैसे हैं, महल हैं, उनके घर में मैंने देखा पांच पांच छह छह कुत्ते हैं, बड़े ऑल्सेशियन डॉग्स, और सवेरे उनको लेकर के टहलने चलते हैं। हनुमान जी क्या मामला क्या है, सभी के घर में इतने कुत्ते देखते हैं और अपने कुत्तों के साथ में लेकर के, अपनी पत्नी के साथ में नहीं टहलते, अपने पिता के साथ में, भाई के साथ में, मित्रों के साथ में, ये कुत्ते को ही लेकर के क्यों घूमते हैं, बात क्या है? किसी ने बतलाया ये बात ये है कि अपने पतियों पर, अपनी पत्नियों पर उतना विश्वास नहीं है जितना कुत्ते को पर, क्योंकि वो पांच पांच छह छह बार बदली हुई होती हैं, डाइवोर्स की हुई, वो पत्नी पत्नी ही नहीं है जो जो पांच बार जिसने तलाक नहीं दिया, इसलिए कुत्ते पर विश्वास है। उनका बैंक बैलेंस अलग है, माता का अलग, पिता का अलग, बेटी का अलग, बेटा का अलग, पति का अलग, पत्नी का अलग, कब जाने का क्या हो जाए, कोई ठीक नहीं, तो वहां पर सुख और शांति कहां से रह सकती है, जबकि इतना भी विश्वास नहीं है परस्पर, वो क्या सुख शांति होगी? भारतवर्ष में वो चीजें पहले नहीं थी, अब आमदनी हो रही है। यहाँ की चीजें विश्व में सर्वोच्च जाती थी, लोग प्रसन्न रहते थे, इसके चीजों को ग्रहण करते थे, आजकल वहां की चीजें यहां आ रही हैं। ड्रेस, यहां का कितना सुंदर ड्रेस था, सिर पर महिलाएं कपड़ा पहन लेकर के चलती हैं। यहाँ का कितना सुंदर ड्रेस, राधा जी का ड्रेस देखो, विश्व में ऐसा कहीं ड्रेस है गोपियों जैसा? और यहाँ पे ब्रज की भी गोपियां भी अब पहनने लगी, कैसी फ्रॉक, फ्रॉक मैंने क्या मेढक ना जाने क्या होता है वो पहनती है, केश खुला, यही बस उनका श्रृंगार है, छाती ताने हुए शांत चलेंगी सड़कों पर, लोग देखें और जब कोई छेड़ते हैं तो कहते हैं हमको छेड़ा, और बुलाते हैं, वो बुलाती हैं, निमंत्रण देते हैं, युवकों के भी ऐसे ही भगवान की भक्ति नहीं है, जीवन पर कंट्रोल नहीं। तो सुख और शांति कैसे हो, जीवन में संयम होना चाहिए, और उसमें भी प्राण है सुख और शांति का, भक्ति भगवान की, यदि भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रहेगी तो वो जीवन में सुखी और शांति रहे। आज सब जगह जीवन में निराशा, बड़े बड़े घरों में मैं जाता हूं, निराशा, ऊपर से मुस्कुरा देते हैं क्योंकि मुस्कुराना है, किंतु सुख और शांति नहीं, क्यों नहीं, भगवान के प्रति जो श्रद्धा चाहिए वो नहीं, भगवान प्रति विश्वास होना चाहिए, ये सब चीजें नहीं, तो कहां तक हो। इसलिए गुरु का कर्तव्य क्या है, यदि गुरु रहे तो गुरु तो है ही नहीं, इसलिए जीवन में कोई कोई कंट्रोल नहीं। गुरु का कर्तव्य यह है, आप लोग थोड़ा सा और आगे चलते आएंगे तो और लोग भी बैठ सकते हैं, काफी जगह है। तब तो गुरु क्या करता है, शिष्य का कोई भी एक तीन का भी यदि गुरु लेता है तो गुरु च्युत हो जाता है, वो किसी चीज का अधिकारी नहीं है। गुरु गुरु मैंने क्या, शिष्यों के सरल हृदय को लेकर के उसे और पवित्र बना करके और राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे, ये गुरु का। यदि शिष्य के एक किसी भी संपत्ति का, धन का, सौंदर्य का, किसी भी चीज का यदि लोभ गुरु के हृदय में हो गया तो वो गुरु पतित है, अर्थ इत्यादि कोई भी चीज, तो आजकल ऐसे गुरु का मिलना भी शिष्य का मिलना बड़ा भारी कठिन है, इसलिए सुख और शांति नहीं है। इंदिरा गांधी सुखी और शांति रह सकी, करोड़ों अरबों खरबों डॉलर इनको तो छोड़ो, रावण उसने सोने की लंका बनाई, आप लोगों के घरों में सोने का कोई महल इत्यादि नहीं, बाथरूम भी सोने का नहीं हो, और उसका बाथरूम हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा, घर में कितनी सुरा और सुंदरियां थी, हजारों, जब हनुमान जी उसमें प्रवेश किया राजभवन में तो देखा जैसे सुरा पीकर हजारों सुंदरियां उसमें पड़ी पड़ रही हैं, और कौन इसमें सीता जी खोजने लगे, एक एक से अपूर्व सुंदरियां, रावण भी उसमें उसका सेवन करके वो भी मूर्छित है, उन्होंने देखा ये सबसे सुंदरी है, कौन थी मंदोदरी, ये सीता नहीं हो, क्योंकि वो कभी भी सुरा का पान नहीं कर सकती, उनका ये लक्षण उसे देखा, वो तो बड़ी संयमी पवित्र चित्त वृत्ति की होंगी इसलिए ये नहीं है। फिर मशक के समान रूप बना करके लंका के एक किनारे में अशोक वाटिका में सीता जी को देखा, ये हमारे देश की संस्कृति है। तो सोने का लंका, ऐसा कोई घर नहीं था जो सोने का नहीं था, माने धन सभी के पास में, सभी कुछ थे, तीन डब्लू थे, तीन डब्लू मैंने क्या, तीनों चीजें थी चरम पराकाष्ठा पर, किंतु रावण खुशी रह सका, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, और कोई भी देने के लिए दिया बाती एक वंश में नहीं रहा, केवल विभीषण जी रहे, क्यों, भगवत भक्त संयमी थे, भक्तों का आदर करते थे, भक्ति का आदर करते थे। जब रावण में रावण नहीं खुशी हो सका इतने परिवार के साथ में, धन संपन्न के साथ में, आप लोग कैसे इसकी दुराशा करते हैं। एक व्यक्ति था, वो सब समय 24-25 वर्ष का युवक बना रहता था। उसका शरीर कहता था वज्र के समान। विश्व में उसको परास्त करने वाला कोई नहीं था, उसे मारने वाला कोई जन्म नहीं लिया। वो दिन में नहीं मरे, रात में नहीं मरता था, आकाश में नहीं, नीचे नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। उसको भूख ही नहीं लगती थी। उसके घर में हवा झाड़ू देते थे पवन देव, इंद्र पानी से उसके घर धोते थे। अर्थात इतनी सिद्धियां थी कि वो जो कुछ चाहता अपने मन से, बस स्विच दबाने की भी जरूरत नहीं थी। हवा को आज जैसे अभी ठंडी हवा होनी चाहिए, शीतल मंद समीर होनी चाहिए, बस साथ ही साथ जैसा उसने इच्छा की वैसे हो गया। किंतु सुखी नहीं था, डरता था कोई हमें मार न दे। वो कौन था? दिन में नहीं मर सकता, रात में नहीं मर सकता, कोई से मार नहीं सकता, धन की कमी नहीं है। 60,000 वर्ष तो उसने तपस्या की बिना खाए पिए, तो उसकी आयु कितनी लंबी होगी। और इंद्र ब्रह्मा तक तो उसे थर 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 कांपते हैं, जो इस जगत का सृजन करने वाले। सुखी रह सका, किंतु उसी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। जब 5 वर्ष का हुआ तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, भगवान नाम करता है। उसके पिता ने कहा, जैसे तू किसका नाम करता है? अरे मैंने तुमको जन्म दिया, पाला पोषा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और तू कुलंगार हो करके ये हमारे विपक्षी का तू भजन करता है। हमारे घर में रहते हुए इसका नाम नहीं ले सकता, किंतु छोड़ा नहीं। अंत में क्या स्थिति हुई? क्या उसे आग में जलाया, विष दिया, काटने की चेष्टा की, हाथी उसके ऊपर में चलाए, पत्थर पहाड़ों से लेकर के फेंका, समुद्र में उसे फेंक दिया, कहीं उसकी मृत्यु ही नहीं हो। उसकी बहन को ये एक योग सिद्धि थी कि वो आग में नहीं मर सकती। बड़ा भारी चीता बनाई गई और अपनी बहन को कहा, जी इसको गोदी में लेकर के बैठ जाए, तू तो मरेगी नहीं, ये मर जाए। तो धधकती हुई आग में बैठी उनको लेकर के, वो जल गई, वो नहीं जल, आग ठंडी हो गई। उस तभी से ये होलिका है, उसी से होलिका जलती है अभी भी हमारे देश। तो भगवान का भक्त कभी भी दुखी नहीं रह सकता, प्रहलाद महाराज जी इसके आदर्श हैं। और भगवान का भजन नहीं करने वाला कभी भी समस्त प्रकार की अवस्थाओं को भी लाभ करके, जो आप लोग चाहते हैं। आप लोग तो अभी 24-25 वर्ष की बात में उस समय में विश्व सुंदरी हो सकती हैं। अभी कोई डाइना या क्या, डाइन क्या नाम है, डाइन ना क्या, डाइन, कोई विश्व सुंदरी चुनी गई है, और 2 दिन के बाद में एक बच्चा हो गया तो फिर क्या होगा? विश्व सुंदरी रहेंगी तो फिर उनको कोई पूछेगा नहीं। इसके बाद में क्या होगा? 2 दिन के बाद फिर दांत टूट जाएंगे, और इसके बाद में बूढ़ी हो जाएंगी, फिर चल फिर नहीं सकेंगी, फिर क्या होगा अंत में? बस खत्म। सुकारमान अपने हृदय में ले, अभी तो खुद आनंद में होंगी, ताज उनके सिर पर होगा, और फिर उनके भीतर में न जाने क्या क्या चल रहा होगा। पैसे से बिकेंगी वो, सौंदर्य में बैठना माने पैसे से बिकना ही, उनका जीवन दुभर हो जाएगा। इसलिए संसार में सुख नहीं है, आत्मसंयम में विशेष करके भगवत भक्ति में सुख है। इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। बड़ा होने पर भगवान का भजन करेंगे ये उचित नहीं। अरे बड़े होने पर तुम्हारी कमर भी तो सीधी नहीं होगी, अभी जो तुम बदहोश होकर के चल रहे हो, चल रही हो, जब बूढ़े हो जाएंगे तब पूछो तो उस मैया से पूछो जो बैठी है, कमर सीधी करके बैठ सकती हैं? ये दशा उनको तो अभी तक है, और तुम लोग उससे पहले ही उम्र में बूढ़ी हो जाएगी, चल नहीं सकेगी, न चल सकते हैं, क्योंकि आत्मसंयम उन लोगों ने आत्मसंयम किया है। इन चीजों को सीखो, भगवान का भजन करना सीखो। ये प्याज लहसुन चाय ये सब सो पॉइजन है। प्याज में 21 प्रकार के विष हैं। अभी अमेरिका गया, वहां से अनुसंधान हुआ। अब जो कोई खाता है तो उस पर लिख देते हैं जे पॉइजन। चाय क्या है? पॉइजन है। ठंडा लगने पर एक दवा है, दवा माने विष। इसी तरह से हमारे भारतवर्ष में लाखों कोटि वर्ष पहले इन सब चीजों का खान पान रहन सहन का अनवेंशन हुआ। ऋषि लोग ऐसे ही नहीं, लाखों वर्ष तक तपस्या का फल हमको दे गए हैं, किंतु हम लोग इसको छोड़ रहे हैं। अब विदेश वाले ग्रहण कर रहे हैं, वो लोग अब सुखी होने जा रहे हैं, वहां के लोग भजन करते हैं। आप लोगों के बीच में देखिए एक सती साध्वी बैठी है, जोग माया इनका नाम है, कृष्ण मनमोहिनी इनका नाम है, इनका नाम रखा गया हरि मनमोहिनी। देखो तो कैसे सिर से बैठी हुई है ना, सिर पर देखो अंचल है, उसका अंग कोई देख नहीं सकता, तिलक है, गले में माला है, देखो तो कैसे। हमारे भारत की संस्कृति को जैसा अपना है आप लोग नहीं अपना सके। निरंतर हाथ में माला होगी इनकी, नहीं समझती है तभी आई है। आई एम वरी दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन इंग्लिश बिकॉज ऑल आर हिंदी नोइंग। मैं जो कुछ कहता हूँ साथ ही साथ में लिख लेती हूँ और पुस्तक के आकार में इसको छपवा लेती हूँ और देश भर में विदेश भर में। ये स्वामी जी की शिष्य, प्रभुपाद जी की शिष्या थी एकदम प्रारंभिक। इसलिए इन सब का विचार करो। इंदिरा गांधी के दो बेटे लाल, राजीव और कौन, स्विस बैंकों में लाखों करोड़ों डॉलर्स जमा है। देश के भावी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री रहे, उनकी मैया भी, उनका बाप भी, इंदिरा का, सुखी रहे, कैसे मारे गए। इसलिए भगवान का भजन करना सीखे। यदि जीवन में भगवत भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। वो कैसा बतलाया गया है, जैसे मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ण के आभूषणों से परिमंडित कर दे, सिंदूर लगा दें, गुलाल लगा दें, होठ रंग दें और सोने के आभूषणों से भर दीजिए, किंतु प्राण नहीं है तो क्या लाभ, समझ रही। इसलिए भगवान का भजन कर, तब तो जीवन में सुखी रहेंगे। भगवान के भजन में भी, भगवान कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, समस्त भगवत्ता की मूल कृष्ण है, इस पर विश्वास रखो। गीता, भागवत, रामायण, वेद, पुराण सब एक स्वर से कहते हैं, इधर उधर मत डोलो, देवी के जागरण में अधिक मत समय गवाओ, उलुल जुलुल उपासना में मत जाओ, शुद्ध रूप में राधा कृष्ण की, और उसमें भी राधा जी की सेवा यदि करो। अभी कहे ना गलियों में, कहां में, कभी शाम क्या, कभी दान गली, कभी मान गली। अरे भाई इसके एक एक से अर्थ हैं, दान गली क्या, मान गली क्या, बड़े बड़े इसके अर्थ। प्रेम का अर्थ, प्रेम का क्या तात्पर्य होता है, ढाई अक्षर का प्रेम जो पढ़ा सो पंडित हो। प्रेम प र मिला हुआ और म, तो प र आधा र, ये अढ़ाई अक्षर हुआ। यदि इसको पढ़ लिया तो पंडित हो गया, नहीं तो सब बेवकूफ हैं। पशुओं में मनुष्य में कोई अंतर नहीं, इस चीज को समझो। हम लोग कोई मनोरंजन करने नहीं आए, इन चीजों को आप लोगों तक संदेश देने के लिए आए। आप लोगों को फुर्सत नहीं जब वृंदावन में आए, कहेंगे सांप्रदायिकता, ये साधु सांप्रदायिक होगा, इसलिए आप लोग नहीं, तो मैं सोचता चाहते तो घरों में चले, तो घरों में आप लोगों के यहाँ पहुंचने में हमको अच्छा कपड़ा पहनना पड़ेगा, लंगोटी पहन करके तो हमको वहीं पर गेट कीपर रोक लेगा, आने ही नहीं देगा, तो क्या करें, तभी इसको पहन रहे हैं, नहीं तो हमको पहनना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके समाज तक कैसे आऊँ। तो ये हम लोग छल बल से कल से यहाँ पर आए हैं इन चीजों को बतलाने के लिए। जैसे नारद जी छल बल करके हिरण्यकश्यपु के घर में जाकर के प्रहलाद जी को उपदेश दिया, इस तरह से भगवान, जितने प्रकार के भगवान की भजन की उपासनाएं हैं उसमें राधा जी की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। राधा जी को यदि पकड़ लिया तो कृष्ण अपने आप पकड़ में आ जाएंगे, किंतु वैसा होना चाहिए। कि भक्ति किसको कहते हैं, जब संसार में कोई भी कामना न करके केवल कृष्ण की प्रीति के लिए ही कृष्ण का भजन हो, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, उनका नाम कीर्तन, विशेष करके कलयुग में नाम, तो सबसे श्रेष्ठ। बोलो तो तुम हारमोनियम लेगी?
वेद उपनिषद सब साक्षी है। जब किसी को भीड़ पड़ी और एकांतिक रूप से कृष्ण को बुलाया,
कृष्ण उसी समय आ गए। द्रौपदी जी इसकी साक्षी हैं। उनके पांचों पांडव भी सहारा नहीं रहे, जब उसका चीर हरण दुशासन हरने लगा, कितने हजार हाथियों का बल लेकर के दुशासन, साधारण नहीं था। और उस सभा में दुर्योधन अपने जंग का कपड़ा हटा दिया, कहा यहाँ पर बैठाओ, नंगी करके बैठाओ, वो हमारा उपहास करती है, ये अंधे का बेटा अंधा होता है, तो ठीक है आज दिखला देता हूँ अंधा का बेटा अंधा, मैं तो अंधा हूँ, नंगी कर देगा तो मैं तो देखूंगा नहीं, इसलिए हमसे लज्जा की बात क्या है, कहती अंधा हूँ तो ठीक है, उसे नंगी करके बैठाओ। जब खींचने लगा अपने पतियों की तरफ में देखी, जुटेश्वरी महाराज जी सिर नीचे किए हैं, भीम तड़प उठे, गदा लेकर के मारने दौड़े, उन्होंने खींच दिया कपड़ा, बैठो देखो तो, एक तरह से तो हम तो हार गए हैं, वचनबद्ध हैं। अर्जुन गांडी उठाया, उन्होंने उनको रोक दिया, देखो कोई भी जब सहारा नहीं दिया तब तो भीष्म पितामह की तरफ में देखा, जब आप तो हमारे पतियों के भी पिता के पिता हैं, पितामह हैं, हमारे ससुर के भी ससुर हैं, पिता हैं, इसलिए आप हमारी लाज रखें। उन्होंने आंख उठाई नहीं, द्रोणाचार्य आप तो सत्यवादी और गुरु हैं सबके, उन्होंने भी नहीं, धृतराष्ट्र की तरफ में देखा, गंधारी की तरफ में देखा, सब नीचे, कोई नहीं जरब चाकी। अब खींचने लगा, पैर से मारा, रजस्वला थी, 3 दिन की स्त्रियां अपवित्र होती उस अवस्था में, केस खुले हुए, केस को पकड़ करके खींच करके लाया, अपमान किया, अब कपड़ा खींचने वाला ही एकदम नंगी होने वाली थी। उन्होंने देखा जिस कैसे रक्षा, तो ये कोई उठे नहीं, तो अपने अंचल को अपने दांतों तलों दबा दिया ऐसे कस करके, किंतु कब तक वो रखेंगे, जब देखा जी इससे भी नहीं होगा, तो अपने हाथों को उठा दिया, अंचल को कभी छोड़ दिया, आंख बंद कर दिया और सारे प्रयत्न छोड़ दिए, हे कृष्ण आप ही मेरे सहारे, हे कृष्ण राख जीवन, अब तो जीवन है, अब हमारा कोई नहीं है। और जब ही ये भाव आया, जब दांतों तले जबकि दबा करके बुला रही हैं, तो कृष्ण का आसन डोल गया, द्वारका में रुक्मिणी के घर में थे, छटफट करने लगे, क्या हो गया आपको चैन नहीं, तो आज भक्त पर भीड़ पड़ी है, बुला रहा था, आप जाते क्यों नहीं, जल्दी पहुंचे मैं जा नहीं पाता, क्यों नहीं बताए हुए अभी, क्यों अभी संपूर्ण रूप से हम हमारे ऊपर में अभी भरोसा नहीं है, अभी दांतों पर भरोसा, पहले तो पतियों पर, फिर इन पर, उन पर, उन पर, अब सबसे एकत्रित होकर के आ गया, तो अपने दांतों पर भी भरोसा, अभी दांतों पर भरोसा तब तक नहीं, जब सब छोड़ करके, हे नाथ अब आपके चरणों में सर्वस्व छोड़ दिया, हाथ उठा दिए, दांत भी छोड़ दिया, प्रभु से यही प्रार्थना करी, दांत उसके खुल गए और कपड़े भी चले गए। उसमें कृष्ण तो दूर तो है नहीं, सर्वत्र हमसे दूर नहीं है, हम उनको नहीं देखते हैं, हम आत्मा है वो परमात्मा है, दूरी एकदम नहीं है, किंतु पर भी नहीं अंधे, जिस दिन हम उनके शरणागत हो जाएंगे उसी दिन वो दूर नहीं है। बस साथ ही साथ वो कपड़ा है कि नारी है, नारी का कपड़ा है, ये कपड़े की नारी है, साड़ी, साड़ी की नारी, निकल लाखों थान के थान रंगीन तरह से निकल लेंगे। भीष्म पितामह ने कहा अब रुक जाओ, अभी कृष्ण का चक्र चलने वाला है, अरे अंधे तू क्या कर रहा है, मैं कुछ बोल नहीं रहे इसलिए समझ रहा है, आज प्रलय होने को है, इसके साथ कहने के साथ जब थम गया तब इसके बाद कृष्ण की ऐसी दया, किसी को मालूम नहीं होने दिया जैसे मैं उनकी सहायता कर रहा। ये साड़ी क्या थी? ये स्वयं कृष्ण थे। यही नहीं, प्रहलाद की कौन रक्षा की, अभी मीरा की कौन रक्षा की, अभी तो अधिक दिन नहीं 500 वर्ष हुए, किसने रक्षा की? एक समय की बात है, एक ब्राह्मण लिख रहा था टीका गीता का अर्थ, तो एक श्लोक आया, श्लोक आया, अनन निश्चिंतेन तो मांग जे जना परजुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योग क्षेम वहम्यहम्। आजकल तो गीता लोग पढ़ते ही नहीं, अब पढ़ते हैं तो बस वो अंट संट लोगों का अनुवाद किया हुआ बेकार का अर्थ पढ़ते हैं। संस्कृत न पढ़े उसका शुद्ध अंततः तो गीता प्रेस कल्याण से अर्थ किया हुआ उसको भी पढ़े तो काम है, तो पढ़ते नहीं। विशेष करके लोगों के घर में आजकल गीता नहीं, बाइबिल मिल सकती है, कुरान मिल सकते हैं, नहीं तो लाला मजनू के पुस्तकें, तरह तरह के नॉवल और ये सब न जाने क्या क्या उलूल जुलूल पुस्तकें मिल जाएंगी, किंतु गीता और रामायण की पुस्तक नहीं मिलेगी। किसी क्या मिले भी तो अर्थ ही नहीं जानते। अरे जवाहरलाल से पूछा गया, वो गए थे जापान में इंडियन दार्शनिकों के लीडर होकर के, ग्रुप लीडर, एक जर्मन स्कॉलर ने पूछा उनसे, फ्रॉम वेयर यू हैव कम, आप कहाँ से हैं? तो मैं भारत से। ओ, भारतवर्ष के प्रतिनिधि हैं, कैन यू से व्हाट इज गीता, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गीता? ओ सॉरी, आई हैव नेवर रेड गीता। तो आप भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने हैं, जो गीता नहीं जानते हैं, जो गीता क्या चीज है? तो यदि फिर आए तो गीता भी पढ़े तो अंग्रेजी से, क्या गीता का अर्थ समझेंगे और उसको ग्रहण क्या कर सकते हैं? आप लोग इसके लिए नहीं, गीता में डूब करके उसके विचारों को सुनने की चेष्टा करेंगे। अंततः गीता घर में एक एक रखेंगे, विशेषकर हमने एक बहुत सहज सरल अनुवाद करके गीता लिखा है, उसका अर्थ लिखा है, व्यास और सुखदेव गोस्वामी और उनके लाइन में लिखा है जो उनके क्या विचार थे, आप लोग पढ़ेंगे यदि चाहते हैं। तो उसमें इस श्लोक का है, यदि कोई अनन्य चित्त से यदि भगवान का शरणागत हो जाता है तो अपने जीवन को रक्षा करने के लिए भी उसकी अब ये नहीं रह जाती इच्छा, उस समय उनका जीवन निर्वाह करने के लिए भगवान जरूरत रहते हैं, खाना पीना वस्त्र इत्यादि अपने सिर पर ढो करके पहुंचा देते। योग क्षेम वहम्यहम्, योग माने जो चीज नहीं है उसके लिए, क्या चीज? उसको जो चीज की जरूरत है, खाना पीना वस्त्र रुपया पैसा, और क्षेम उसकी जो चीजें हैं उसकी रक्षा करते हैं। तो लिखते समय उसको, उस लाइन को लाल काली से, काली समझते हैं ना, स्याही से काट दिया, काट करके चला गया भिक्षा, दोपहर तक भिक्षा नहीं मिली, 3 बज गए, लौटा। इसी बीच में उसके घर में एक छोटा सा सांवला बालक, पीले से कपड़े, साधारण सा पड़ा हुआ पहना हुआ, और अपने कंधों पर एक बंगी, बंगी माने होता है पानी ढोने के लिए, इधर इधर वजन, इधर वजन, एक लकड़ी के ऊपर में, बांस के ऊपर में लटका देते हैं, उसको बंगी कहते हैं, उस पर लटका करके चावल दाल तरकारी सब्जी घी ऐदा मैदा मैट चीनी इत्यादि सब भर करके और उसके घर में चला आया। मैया जल्दी से दरवाजा खोलो, तू कौन है? मैं पंडित जी का शिष्य हूँ, आंख झपके नहीं, मैं तो स्टैंड अप ऑन द बेंच कर दूंगा, कोई भी यदि सोएगा तो हम ये नहीं देखेंगे ये कौन है। तो वो बच्चा दरवाजा खोल दिया, खोल करके, बेटा तू इतना छोटा सा इतने बड़े भार लेकर के आ रहे हो? हाँ मैया, थोड़ी सी देर हो गई, बुलाया पंडित जी ने, मैं उनका शिष्य हूँ, बुलाया तो हमको 1 सेकंड की देरी हो गई, 5 मिनट की, तो मैं देरी करके आया तो हमारे हमको बिगड़ गए और हमारे पीठ पर अपने नखों से ऐसे चीर दिया, और सचमुच में दिखलाया, मालूम होता है अभी चीरा हुआ, खून निकलने वाला है। देख करके बेचारी के हृदय में दया, माता क्या स्वभाव, ये तुमको ऐसा इन्होंने कर दिया, बड़े निष्ठुर है, तो आज आएंगे तो मैं इनको देखूंगी। बेटा तुम अभी थोड़ा सा बैठ जाओ, पानी पी लो और ये पसीना सूख जाए। और एक पंखा करने लगी, बोले जी अभी मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे लिए कुछ खाना बना दे। कुछ था तो नहीं, ये लाया था उसी में से लिया, कुछ हलवा बनाने लगी। इतने में 3 बजे उसके स्वामी आए। अरे दरवाजा खोलो दरवाजा, बहुत क्षीण स्वर, जबकि खोला दरवाजा। आप बड़े निष्ठुर हैं, उस बच्चे को एक तो इतना भार देना चाहिए, कितना कोमल उसका शरीर है, कितना सुंदर है, और आपने ममता रहित होकर निष्ठुर होकर के उसके ऊपर में लाद दिया पसीने से तरबर, और उसके मालूम खून निकल रहे हैं। अरे कहाँ बच्चा, मैं तो जानता नहीं। अरे अपने शिष्य को भेजा नहीं, तो नहीं तो मैंने, हम तो मैं कुछ जानता ही नहीं, तो चलिए घर में अभी देख लाता हूँ, बैठा है, मैंने उसको बैठा रखा है। तो खोजा खोज दे, कहीं नहीं मिला, किंतु उसका लाया हुआ सामान सब पड़ा हुआ है। देखो ये सामान काजने कहाँ चला गया। अब वो ब्राह्मण रोने लगे, ये गीता लाना, तो गीता देखा था, वो लाल जो स्याही थी वो उसमें से, काजे ये कृष्ण ही थे। तुम इतनी सौभाग्यवती हो जो उनको देखा तुमने, और हमने देखा भी नहीं, हमारा जीवन बेकार का। ये रोने को रोने लगे, बेहाल हो गए। इसके बाद में फिर वो हट गया, माने कृष्ण समस्त लोगों की जीवन के भरण पोषण वही करते हैं। कभी तुम लोग माता के गर्भ में थी तो वहां पर कौन खिलाता था भोजन, भोजन कौन देता था, कौन देता था, पतला शक्ति मैया खाती थी, मिल जाता था, वो कैसे मिलता था। उस समय तुम्हारा ये शरीर एक मांस का एक पिंड था, बंधा हुआ एकदम जंजीरों से, और पैखाना टट्टी में गड़ा हुआ, ऊपर पैर नीचे सी, उसमें में निकलने के लिए छटफट छटफट करते थे। उसमें कौन पालन पोषण किया, मैया खाती थी रोटी, वो दूध कैसे बन गया स्तन में, जिनको बच्चा नहीं उनके स्तन में दूध क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये सब चीजों को याद रखो, पल पल में यदि भगवान हमारा पालन पोषण करें, हम बीच बच नहीं सकते, और वो भगवान कृष्ण है। अभी हम श्वास ले रहे हैं, शरीर स्वस्थ है, बुद्धि ठीक है, ये भगवान की बड़ी दया है, समझो। इसी स्वस्थ शरीर में आज ही से, अभी से, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे कब। अभी जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, पर कोई पता नहीं ये घर में पहुंचे कि नहीं, कोई ठीक नहीं, गारंटी नहीं। इसलिए अभी से तुरंत भगवान का भजन आरंभ कर दो, यदि सुख और शांति जाए, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। चलो तो मैं दोनों मिलकर के करूंगा, तुम एक कीर्तन करेगी। अभी ब्रज से सुंदर कीर्तन ब्रज की करेंगे। कृष्ण रास से अंतर ध्यान होने के बाद में जब आए तो गोपियों ने उनसे पूछा कि आप बतलाइए, प्रेम करने वाले बहुत होते हैं, जो प्रेम करने पर प्रेम करता है कोई व्यक्ति, और कोई दूसरा होता है जो प्रेम करो न करो तब भी प्रेम करता है, और कुछ होता है प्रेम करो और न करो वो किसी से भी प्रेम नहीं करते। आप तीनों में से हे महाशय जी आप कौन से हैं, श्याम को पूछा। समझ रहे हैं ना, प्रेम करने के बदले कोई प्रेम करते हैं, और कोई है जो प्रेम करो न करो वो प्रेम करते हैं। आक्रोहियत है लाख प्रेम करो और न करो वो किसी से प्रेम नहीं करते। महाशय जी आप तीनों में से कौन से में हैं ये बतलाइए। तो कृष्ण हंसने लगे, गोपियों ने उनको छकाना चाहा, जो प्रेम के करने पर भी नहीं करते वो तो कृतघ्न होना चाहिए ना। कृतघ्न किसको कहते हैं, किए हुए उपकार को नहीं मानना, ये कृतघ्नता है। माता पिता की यदि कोई पुत्र या कन्या सेवा नहीं करती है तो वो क्या है, जिसने अपना सब रक्त दे करके दिन रात जग कर और दिन रात पालन पोषण किया, रात बेरात सब समय उनके मलमूत्र धोए, अपने जीवन की परवाह नहीं की, सुक्ति की परवाह नहीं, और उसकी यदि कोई सेवा न करे बेटा और बेटी होकर के, ऐसा कोई कृतज्ञ नहीं। तो महाशय जी, आप तीनों में से कौन है जरा स्पष्ट स्पष्ट करके बतलाइए। तो कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छी तरह से सुनना, यदि कुछ समझना है तो। कृष्ण ने कहा, देखो मेरी प्यारी गोपियों, प्रेम के बदले जो प्रेम करता है वो बनिया है,